जय माँ। योग समन्वय पार्ट टू भाग दो, द योगा ऑफ इंटीग्रल नॉलेज, और उसमें हम लोग सातवां अध्याय, सेवेंथ चैप्टर, और बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका नाम है रिलीज फ्रॉम द सब्जेक्शन ऑफ द बॉडी। तो ये तीन प्रकार के पाश हैं जो हमको बांध के रखते हैं। मुख्य चीज क्या है कि जो योगिक साइंस है या स्पिरिचुअल थॉट है, वो क्या कहता है कि जो हमारा सच्चा स्व है, द सेल्फ, वो ना केवल ये शरीर नहीं है, वो मन भी नहीं है। इट इज समथिंग बियॉन्ड द बॉडी एंड माइंड, अदर देन द बॉडी एंड माइंड। ये कन्फ्यूजन है मॉडर्न साइकोलॉजी में, जो माइंड को ही सेल्फ समझते हैं, वो दे कैनॉट गो बियॉन्ड द माइंड। लेकिन अपनी बोलचाल की भाषा में भी कई बार देखिए सत्य उजागर हो जाता है। कैसे? हम लोग ये नहीं कहते कि मैं मन हूँ, हम कहते हैं कि मेरा मन मैं ऐसा सोच रहा हूँ, यानी कोई चीज़ है जो उससे अलग है। जब बहुत तीव्र होती है कोई चीज़, अब देखिए तीव्रता से हम उससे आइडेंटिफाई हो जाते हैं। कई बार हम शरीर के बारे में ऐसे कह देते हैं कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कई बार हम ऐसे भी कहते हैं कि मेरा शरीर बहुत दुख रहा है। दोनों चीज़ें डिपेंड्स इंटेंसिटी से हम उसके साथ एक हो जाते हैं कई बार। यानी कोई चीज़ है हमारे अंदर जो देह, प्राण, मन इससे अलग है, उस सेल्फ को हमको ढूंढना है। मुख्य चीज़ ये है इसमें। लेकिन वो सेल्फ बंधा हुआ है, हम बंधे हुए हैं जिस भूमि पर, वो हमको सेल्फ की खोज के लिए उस भूमि से आगे बढ़ना कठिन होता है। इसको सावित्री बड़े सुंदर ढंग से दी पैराबल इन दिस फॉर द सर्च ऑफ द सोल, उसमें दिखाया गया है। तो इसकी कहानी भी है वेदों में, सूर्यशेप की कहानी। सूर्यशेप तीन पाशों में बंधा हुआ है और बलिदान के रूप में, मानव एक ऐसा मानव जो बलिदान के लिए प्रस्तुत है। बलिदान किसके प्रति? प्रकृति ने ये संयोजन किया है और निम्न देवता के प्रति वो बलिदान हो रहा है। ये हम सबके जीवन की कहानी है। तो उसको रिलीज करने के लिए आवाहन किया जाता है वरुण का, जो तीनों पाशों से उसको मुक्त करते हैं। तो ये तीन पास कौन से हैं? एक है शरीर। तो कॉन्स्टेंटली हम देह के साथ, मैं देह हूँ, कोई इफ समबडी डाइज सो वी से दैट पर्सन इज डाइड, पर ये सच नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू फ्रॉम द स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू। बट इतना आइडेंटिफिकेशन है बॉडी के साथ, बॉडी की अवस्थाओं के साथ। फिर दूसरा जो पास है वो हमारे भावनाओं का, जो प्राण तत्व से हम बंधे हुए हैं, दे डू नॉट अलाउ अस टू, हमें वो रिलीज नहीं करते हैं आगे बढ़ने के लिए, जाने के लिए, यानी को बंधन जो बांध के रखते हैं। और तीसरा जो है वो मेंटल ईगो, माइंड के साथ ईगो का डेवलपमेंट होता है और एक अहम भाव जो आता है, जो पशुओं में नहीं है, मनुष्यों में है। तो ये तीनों से कैसे कैसे, जब तक हम इनसे मुक्त नहीं होंगे तब तक हमको सेल्फ रियलाइजेशन या उस ट्रू सेल्फ जिसकी खोज कर रहे हैं वो प्राप्त नहीं होगी। हम वहीं घूमते रहेंगे, उसकी कभी रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब देख लेंगे, छाया आभास ये सब हो सकता है, लेकिन एक्चुअल उस सेल्फ से हमारा परिचय नहीं होगा। तो कहाँ से शुरू करें? शेयरविंद शुरू करते हैं, जो सबसे कठिन पाश जिसने बांध के रखा है एक सेंस में देखा जाए, लेकिन एक तरह से आसान पाश। आसान किस लिए? क्योंकि मन स्वयं को शरीर से अलग कर सकता है। ये मन के अंदर ये डिटैचमेंट की एक कैपेसिटी है जो प्रकृति ने स्वयं दी है। तो हम अपने को शरीर से अलग कह के करके कह सकते हैं कि अरे मेरे शरीर में पीड़ा हो रही है, हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि शरीर में क्या हो रहा है। लेकिन मन को स्वयं से डिटैच करना, ये कला बहुत ही कठिन है। तो एक सेंस में शरीर से स्वयं को अलग करना ये रिलेटिवली ईजी है, पर दूसरे सेंस में बहुत कठिन है, क्योंकि शरीर की पकड़ इतनी मजबूत होती है। मन का सुख दुख आता जाता है हम लोग, लेकिन शरीर में पीड़ा होती है तो देखिए व्यक्ति कैसे पूरी तरह से जुड़ जाता है। तो इससे अलग करना फर्स्ट स्टेप है, और इससे अलग करने का सबसे पहला यही जो हम लोगों को कार्य करना है, वो है कि मन को शरीर से अलग करके शरीर को देखने की प्रैक्टिस करनी है, जिसको कहते हैं विटनेस, या जो सेम योगा वर्क्स में भी हम लोगों ने पढ़ा कि पुरुष प्रकृति। तो मन को एक तटस्थ रूप धारण करके देखना है शरीर के अंदर, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस पर मेडिटेशन भी होता है और अगर हम इसको करने लगें तो हम देखें कि हमारी पीड़ा बहुत कुछ कम हो जाती है। एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो हम लोग कभी भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई पीड़ा हो रही है तो हम उस पीड़ा को बड़े ऑब्जेक्टिवली देखने की चेष्टा करें। तो जब हम ऑब्जेक्टिवली देखने की चेष्टा करते हैं तो हम देखें कि मन जब जुड़ जाता है तो उसको बहुत एम्पलीफाई करता है। वो धीरे 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 हम देखते हैं कि वो इतनी पीड़ा है, और इसको हम लोग काउंसलिंग में इस तरह भी करते हैं कि भाई एग्जैक्टली बताओ पेन कहाँ है, लोकेट करो। तो धीरे धीरे आप उस चीज़ को नैरो डाउन कर रहे हैं, तो आप देखते हैं कि आप तो इससे कहीं अधिक हो, ये एक छोटा सा स्पॉट है जो पेन कर रहा है। लेकिन पीड़ा उस समय होती है, वो एक अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिस करनी है हमको मन को डिटैच करने की। कैसे हम लोग करेंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। मान लीजिए भूख लगी है और खाना नहीं मिल रहा है, या आपके मन का खाना नहीं मिल रहा है आप स्पेन में फंस गए हो तो आप क्या करोगे? तो आप परेशान हो सकते हो, प्रयास कर सकते हो ऐसे, या आप अपने मन को अलग करके ठीक है हम जैसे है जो व्यवस्था है हम इससे परेशान नहीं होंगे, तो मन अपने आप को अलग करके देखने लगता है। और अगर हम इसको का अभ्यास करने लगें तो यहाँ तक कि बीमारी में भी और मृत्यु में भी हम अपने को स्वयं से बिल्कुल अलग करके उस चीज़ का अनुभव कर सकते हैं। इस हद तक ही अनुभव चला जाता है कि एक्चुअली ये एक अनुभव होता है कि ये शरीर एक कपड़ा है, एक्चुअल एक्सपीरियंस, ये केवल एक इंटेलेक्चुअल बात नहीं रह जाती, एक कपड़ा है जिसको हम, जो हमसे बाहर है, हम ये अलग है हमसे और हम इसको बाहर निकाल करके रख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने जब शरीर त्यागा तो अपने एक डिसाइपल के स्वप्न में आए और कहते हैं कि नाउ आई हैव स्पैट दिस बॉडी, शरीर को मैंने थूक दिया अपने से बाहर। मतलब ये एक रियल एक्सपीरियंस है, इस हद तक जा सकता है। तो पहले हमको मन की हेल्प लेकर के इस शरीर से अलग करना है, और दूसरा फिर मन को भी ये बताना है कि देखो मैं जो हूं तुम नहीं हो, मतलब तुमने ये हमारी ये सहायता की, लेकिन तुम, तुम्हारी एक स्थान है, जैसे एक राजा या कोई जो प्राइम मिनिस्टर है कि भाई जो मिनिस्टर है वो डेलीगेट पावर है। फॉरेन मिनिस्टर अभी जा रहे हैं भैया जी के राज्यभिषेक में या गए, तो वो बात करेंगे अगर वहाँ पे ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, बट ही इज़ नॉट द प्राइम मिनिस्टर। तो मन को ये बताना है कि देखो तुम एक मिनिस्टर हो लेकिन जो मालिक है वो कोई और है। तो इस प्रकार से हम मन से भी स्वयं को डिटैच करते हैं, लेकिन वो बाद की बात है। अब इसमें हम लोग दो वृत्तियाँ अपना सकते हैं। एक है कि हमको शरीर से अपने को डिटैच करना है, शरीर के साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा है कि हम शरीर की, मन की, प्राण की कैपेसिटी को कितना बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिव्य माँ का यंत्र बनना है, तो क्या हम उससे दुगनी तिगुनी चौगुनी कैपेसिटी भी बढ़ा सकते हैं मन की, शरीर के ऊपर कार्य करने की। इसको अगर हम इस तरह से देखें तो एक है कि व्यक्ति बीमार है, वो रेस्टेड है लेकिन वो प्रभावित नहीं हो रहा है क्योंकि वो उससे अलग है। दूसरा, वो बीमार है लेकिन क्या वो उसको जो कार्य करना है वो करता हुआ उससे निकल सकता है क्या, ठीक हो सकता है, या जितना आउटपुट नॉर्मली उसके हेल्दी स्टेट में होना चाहिए क्या उससे वो कहीं गुना आउटपुट दे सकता है। तो योगा ऑफ इंटीग्रल नॉलेज में ये दूसरा एस्पेक्ट है, लेकिन इसको यहाँ पर शेयर में डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि वो योगा ऑफ सेल्फ परफेक्शन के लिए उन्होंने वो पार्ट छोड़ा हुआ है। लेकिन कम से कम शरीर को से मन को अलग करना और देखना, उससे प्रभावित नहीं होना, ये हमको एक एटीट्यूड लेकर के ट्रेन करना होता है, ये एक ट्रेनिंग है। हर बार अवसर मिलता है, कई बार प्यास लगी है, अब हम जब आइडेंटिफाई हो जाते हैं शरीर के साथ तो छटपटाने लगते हैं। जब आइडेंटिफाई नहीं होते हैं, कई बार ऐसे मौके हो सकते हैं कि आपके पास पानी नहीं है। एक बार तो बहुत ही अजीब घटना हुई है मेरे साथ, पटियाला से बस जा रही है दिल्ली के लिए, तो बैठी हुई है कविता जा रही है, तो मैंने कहा अरे पानी नहीं है, पानी ला करके मैंने उसको दिया। अब बगल में एक बच्चा रो रहा था, उसको पानी की ज़रूरत थी, तो इसने उसको पकड़ा दिया। मैंने कहा हाँ ठीक बात है, तुम्हारे लिए मैं लाता हूँ, और अब बस चल दी। पूरे बस में देयर वाज नो मोर वाटर फॉर हर। अब ऐसी अवस्थाएं आती हैं तो आप उसको सहन करते हो, ये भी एक शक्ति है। तो ये सारी चीजें हम लोग बहुत से अवसर मिलते हैं, इसलिए माँ कहती योग 24 घंटे चलने वाली प्रक्रिया है, ये केवल बैठ करके कुछ समय ध्यान करना उतना काफ़ी नहीं है, इट्स ए प्रोसेस दैट गोज ऑन फॉर 24 आवर्स। हर चीज़ में आपका क्या एटीट्यूड है वो मैटर करता है, ये इसका बैकग्राउंड है। अब हम लोग थोड़े बहुत इसमें से कुछ पैसेजेस पढ़ेंगे। चैप्टर 7, पार्ट 2, चैप्टर 7, द योगा ऑफ इंटीग्रल नॉलेज, द रिलीज फ्रॉम सब्जेक्शन टू द बॉडी। अब कुछ कुछ अंश हम पढ़ेंगे। तो पहली चीज जो बताते हैं शेरविंद, सेपरेशन बिटवीन द प्रकृति एंड द पुरुषा। अब मन के साथ क्या समस्या होती है, ही फॉरगेट्स दैट द माइंड इज रियली ग्रेटर देन मैटर एंड ऑट नॉट टू सबमिट टू इट्स ऑब्सक्यूरेशंस, रिएक्शंस, हैबिट ऑफ इनर्शिया, हैबिट ऑफ इनकैपेसिटी। ये सब चीज़ें हैबिट हैं और ये हम सब अपने बॉडी के साथ ऑब्जर्व कर सकते हैं, कौन सा खाना प्रिय होता है, सोने के टाइम की, जैसे मेरी बचपन से आदत पड़ गई कि दोपहर को आपको डांट करके मम्मी पापा सुला देते थे, अब वो जो भी अच्छे मन से, अब वो आदत इतनी इनग्रेंड हो गई कि वो आप लंबे समय तक चलती है। लेकिन कई बार ऐसे अवसर होते हैं जब आप नहीं सो सकते हो, आप या तो काम पे गए हैं या आपके टॉक्स हो रहे हैं या कई चीज़ें, तो ऐसा नहीं बिल्कुल दास नहीं हो जाना है कि हम उससे इतने प्रभावित कि हम बिल्कुल पैरालाइज हो जाएं, काम ही ना कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हैबिट्स हैं, यहाँ तक कि माँ बताती हैं इवन डेथ इज़ ए हैबिट, कि आयु के साथ बॉडी को डिजेनरेट करना, ये सेलुलर हैबिट है, जैसे बाकी शरीर की हैबिट्स होती हैं वैसे सेलुलर हैबिट्स हैं। और ये तो बहुत आश्चर्य होता है, जब मैंने हम लोग मेडिसिन पढ़ रहे थे तो मुझे पहली बार एक बड़ा घोर आश्चर्य हुआ, हम लोग भारतीय परंपरा से तो हम लोगों को लगता था कि भाई दिन में कम से कम एक बार, प्रेफरेबली दो बार शौच जाना चाहिए, ये एक बचपन से एवरेज भारतीय के दिमाग में डाल दिया जाता है, ब्राह्मण परिवार में और भी ज़्यादा कि भाई शौच, क्लिनलीनेस, इनर सब बाहर। तो जब मैंने ये पढ़ा कि नहीं, पश्चिमी देशों में आप 3 दिन में एक बार शौच जाते हो, तो आई कांट इमेजिन कि ये कैसे संभव होता है। तो ब्रेड की डाइट उसके कारण ये ऐसा है या जो भी है, लेकिन दे आर प्रेटी नॉर्मल अबाउट इट, उनको इससे कोई समस्या नहीं होती है। उनको इससे समस्या होती है कि हम लोगों को, हम इतनी बार वॉशरूम क्यों जाते हैं। तो ये देखिए एक हैबिट है बॉडी की, अलग अलग जगह अलग अलग हैबिट्स होती हैं, कुछ ठंड में जो रहने वाले होते हैं उनको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, क्यों, शरीर उस तापमान को बेयर कर रहा है। तो कोई भी चीज़ इसको मान लेना कि शरीर के लिए या काट्य सत्य है, ऐसा नहीं है। आप जहाँ रह रहे होते हो, जिस परिवेश में बड़े होते हो, उसकी हैबिट। अब अगर ये हैबिट है तो इसको हम रिट्रेन कर सकते हैं, ये एक बेसिस है आजकल थेरेपी का भी, जैसे पैरालाइज हो जाता है तो ये रीट्रेनिंग की जाती है स्पीच की, क्योंकि ब्रेन सेल्स के अंदर भी एक न्यूरोप्लास्टिसिटी है, उनको फिर से ट्रेन किया जा सकता है कि नहीं भाई तुम लोग, ये सेल्स डेड हो गई हैं लेकिन आसपास वाली सेल तुम्हारा फंक्शन ले सकती हैं। कठिन होता है लेकिन ये प्रोसेस है। तो ये पहले मन को ये सीखना है कि वो मैटर का दास नहीं है, वो चाहे तो इसका स्वामी है। और इसकी 2-3 बड़ी सुंदर कहानी है, एक तो है जब क्वीन एलिजाबेथ की कहानी जो माँ बताती हैं कि जब वो मृत्युशैया पर हैं और बाहर उनके जो प्रजा है वो ब्रेड के लिए वो विद्रोह कर रही है, और रानी को ये बताया नहीं गया था कि क्या हो रहा है, लोग थे सामंत जो थे वो बस अपने लूट खसोट में लगे हुए थे, और रानी को पता ही नहीं था कि मेरी प्रजा इतनी रुष्ट है, इतनी परेशान है। तो वो जब घिराव कर लेते हैं तो वो कहती है मेरी प्रजा क्यों ऐसे आई है, मैं देखना चाहती हूँ। नहीं नहीं रानी, तुम तो मृत्युशैया पर हो तो मत उठो, हम लोग देख लेंगे। तो रानी उठती है और कहती है बट डेथ कैन वेट, मृत्यु प्रतीक्षा कर सकती है लेकिन मेरी प्रजा को मैं ऐसे रुष्ट नहीं देख सकती, और जाती हैं। और ऐसी कई कहानियाँ हैं जिसमें लोगों ने बिल्कुल एक ऐसा रिएक्शन दिया है शरीर ने, क्योंकि वो मन अब उसके अधीन नहीं था। रानी पद्मिनी का जौहर, कोई कैसे कूद सकता है अग्नि में सदेह देखा जाए। इवन सती जो प्रथा थी, कुप्रथा सुप्रथा, वो एक अलग बात है, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि कोई सोच करके वरण कर रहा है मृत्यु को, अग्नि में अग्नि स्नान कर रहा है कोई बिना कंपल्शन के, किस भाव से कर रहा है. आई मीन जस्ट इमेजिन दिस, ये सोच नहीं, इमेजिनेशन के परे है. अभी हाल में आया एक बुर्ज खलीफा पर एक लेडी ने अपना कैसा तो वीडियो वायरल किया. इट्स अनइमेजिनेबल कि ये संभव है, लेकिन संभव है. मन मास्टर होता है, लेकिन वो स्वामी अब तक ये कि नहीं मैं तो शरीर का दास हूँ. और जब कठिनाई होती है तो इंसान करते ही है. एक पार्किंसन का केस था तो एक न्यूरोलॉजिस्ट ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात, सामने सामने की बात है, कि मैं क्या करूँ, मैं उठ नहीं सकता, मैं तो एकदम इनर्शिया आ जाता है. उसने एक बात पूछी, अगर सच में यहाँ पे सांप आ जाए तो आप क्या करोगे? अब वो सांप नहीं है तो कल्पना नहीं कर सकता है, लेकिन सारी चेष्टाएं करेगा, क्योंकि वो एक मान लिया है मन ने कि ये मेरी शरीर की हालत है, मैं तो ऐसा हो गया हूं. तो ये पहली चीज जो है वो हमें सीखनी है कि सब हैबिट्स हैं. ही फॉरगेट दैट ही इज मोर इवन देन द माइंड, ए पावर विच कैन रेज द मेंटल बींग अबव इट सेल्फ. कौन? पुरुष, द सेल्फ विद इन अस. वो ये भूल चुका है that he is the master, the transcendent, and it is not fit the master should be enslaved to his own workings. तो ये पहली चीज है कि स्वामित्व को, प्रभुत्व को वापस प्राप्त करना है. तो इसके दो स्टेप्स हैं. पहला, मन को विलग करना है शरीर से, और दूसरा कि मन से स्वयं को विलग करना है कि मैं इससे, मैं केवल ये मन नहीं हूँ. We say then to the mind, this is a working of prakriti, this is neither thyself nor myself, stand back from it. तो ये एक प्रयास है जो करना होता है, अंदर अंदर में डिटैच करना. We shall find if we try that the mind has this power of detachment and can stand back from the body not only in idea but in act and as it were physically or rather vitally. This detachment of the mind must be strengthened by a certain attitude of indifference to the things of the body. एक तो है कि हमें मन को अलग करना सीखना है शरीर से, फिर शरीर के प्रति एक हमारा एटीट्यूड होता है जिससे ये और आसान हो जाता है. और वो क्या एटीट्यूड है? बहुत अधिक शरीर के कंफर्ट, प्लेजर, भूख प्यास, रोग शोक, इस पर बहुत ध्यान नहीं देना है. इनफैक्ट जितना कम दें उतना अच्छा है. मिनिमाइज कर सकते हैं हम इसको कंप्लीटली. और ये चीज शेरविंद हमें बता रहे हैं क्या एटीट्यूड होना चाहिए. वी मस्ट नॉट केयर एसेंशियली अबाउट इट्स स्लीप और इट्स वेकिंग. तो कई बार ये लोग कहते हैं ना, नहीं अब मैंने तो एक्चुअली देखा है कि हार्ट अटैक होते हुए किसी व्यक्ति को कहता है मैंने तो सारी चीजें वो सही कर रहा था. 60 साल की उम्र की बात बता रहा हूँ जो टिक बॉक्स की गई है. मैंने कहा क्या क्या कर रहे थे? रोज सुबह मैं टाइम पर उठता था, मैं वॉकिंग करता था, मैं वॉकिंग के नहीं रनिंग करता था, मैं भोजन ऐसा करता था, वो करता था. मैंने कहा सारे समय आपका ध्यान कहाँ केंद्रित रहता था? शरीर पर और भय से कि भाई मुझे रोग ना हो इसलिए मैं कर रहा हूं. तो अल्टीमेटली तो आपका ध्यान कहाँ केंद्रित हुआ? शरीर के ऊपर. तो आप बंध गए ना शरीर से. तो एक दूसरा एटीट्यूड है कि नॉट टू केयर. अब यहां पे बहुत घबराहट होती है लोगों की, ऐसे कैसे होगा. बड़े बड़े जस्टिफिकेशन आते हैं. शरीर तो इंस्ट्रूमेंट है ना. तो ठीक है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट है, स्वामी नहीं है. कम से कम इतना तो हमको समझना चाहिए. और इंस्ट्रूमेंट का जो स्वामी है वो सर्व सक्षम ब्रह्म है, ईश्वर है. सो वी मस्ट नॉट केयर एसेंशियली अबाउट इट्स स्लीप और इट्स वेकिंग, इन मूवमेंट और इट्स मूवमेंट और इट्स रेस्ट, इट्स पेन और इट्स प्लेजर, इट्स हेल्थ और इल हेल्थ, इट्स विगर और इट्स फटीग, इट्स कम्फर्ट और इट्स डिसकम्फर्ट, और वॉट इट ईट्स और ड्रिंक्स. अब ये एक सिंपल अनुभव है, कई लोगों का हुआ होगा. कोई भी जब शरीर से श्रम करना हो तो सोच के ज्यादा थकान होती है. चढ़ना पड़ेगा, इतना चढ़ना पड़ेगा. अब मान लीजिए आपको चढ़ना पड़ेगा तो आप क्या करते हो? अब चढ़ना है, चढ़ते चढ़ते चढ़ जाते हो. तो इसको मैंने एक शब्द यूज किया है कि अपने सिस्टम में डाल लेना. तो कई बार है कि आप जा रहे हो ट्रैवल, कई बार होता है हम लोग ट्रैवल करते हैं, नींद ये सब उल्टी पुल्टी हो जाती है. तो आप सोचते रहो लोग, अच्छा बहुत बड़ी भाई इतनी लंबी जर्नी है, हम तो नहीं कर सकते, ये सब लोग कहते हैं. हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो क्या करते हैं? निकल गए तो निकल गए, अब पहुंच जाएंगे, पहुंचने के बाद देखेंगे. अब ये मन को सोचते नहीं रहना है कि अरे बाप रे इतना लंबा जर्नी यात्रा है उसमें हम सोएंगे नहीं. तो मन उस चीज को जब जुड़ जाता है शरीर से तो बहुत अधिक एम्प्लीफाई करता है. तो शरीर का जो श्रम है वो तो होगा, लेकिन हम के हमारे मन को हम उससे अलग कर सकते हैं. वी हैव बट वी हैव हाँ दिस डज नॉट मीन दैट वी शैल नॉट कीप द बॉडी इन राइट ऑर्डर सो फार एज वी कैन. मतलब हमें नागा सन्यासी नहीं बनना है कि कोई केयर नहीं है, हम जैसे मर्जी. ये नहीं कहा जा रहा है कि आप डेलिबरेटली विलफुली शरीर को टॉर्चर कर रहे हो या बिल्कुल आप कैसे भी जमीन में सो गए, कांटों पे सो गए, ये नहीं करना है. लेकिन वी हैव नॉट टू फॉल इन टू वायोलेंट एसेटिसिजम्स और ए पॉजिटिव निग्लेक्ट ऑफ द फिजिकल फ्रेम. तो ये मतलब नहीं है इससे कि भाई मैं स्नान नहीं करूँ. कई बार मुझे देख के लगता है कि नागा साधु स्नान करने जा रहे हैं, इनको देख के तो लगता है पता नहीं कितने दिनों से स्नान नहीं किया होगा. तो एक बार ये भी आता है कि सारे के सारे स्नान करने जा रहे हैं, अच्छी बात है. लेकिन वन कैन जस्ट इमेजिन कि भाई इतने दिनों से लगता है, बिकॉज दे डोंट केयर. आई हैव एक्चुअली सीन पीपल ऐसे एसेटिक्स जो नहीं केयर करते हैं, और ऐसा है कि वो रोग वगैरह नहीं होता है उनको, क्यों ना शरीर को एक वायलेंट एसेटिसिज्म कि भाई एक पांव पे खड़े रहे बहुत समय तक. ये इसको आसुरी तपस्या कहा गया है हमारे इसमें योग शास्त्र में. ये आसुरी तपस्या है, ये वास्तव में दैवी तपस्या नहीं है, लेकिन तपस्या तो तपस्या है, फल लाती है. एक पांव पे खड़े रहेंगे, भोजन नहीं करेंगे कितने दिन तक, और नाना प्रकार की पीड़ा कष्ट देंगे, हिमालय पे जाकर के एकदम बेयर बॉडी बैठे, ये तपस्या होती है एंड पीपल डू इट. जहाँ मैं पोस्टेड था लेह के ऊपर, वहाँ पे ये लामा, हेड लामा बनने के लिए आपको शरद ऋतु में नदी के पास आकर के रात को अपने स्नान, आपको गीला कंबल उड़ाया जाता था, आपको शरीर के ताप से उसको गर्म करना होता था 21 बार, नॉट वंस. मतलब शरीर में इतनी ऊर्जा पैदा कर लो कि उसको आप, अब शेरविंद कह रहे हैं ये करने की जरूरत नहीं है, वो एक एसेटिक पाथ है, वो वास्तव में आसुरी तपस्या है. तो इस तरह की चीज नहीं कह रहे हैं, लेकिन बॉदर करते रहना सारे समय. कई बार जैसे हमारे यहाँ व्रत उपवास भी होता था, तो सारे दिन ये कि भाई शाम को खाना क्या बनेगा, और खाना बड़ा टेस्टी होता था, सबकी निगाहें उस पर हैं कि आज खाने में कुछ अलग बनने वाला है विशेष. तो ये प्री ऑक्यूपेशन विद फूड, प्री ऑक्यूपेशन विद स्लीप, ऑल दिस वी हैव टू गेट रिड ऑफ. ये मुख्य चीज है. बट वी हैव नॉट ईदर टू बी अफेक्टेड इन माइंड बाई हंगर और थर्स्ट और डिसकम्फर्ट और इल हेल्थ और अटैच द इम्पॉर्टेंस विच द फिजिकल एंड वाइटल मैन अटैचेस टू द थिंग्स ऑफ द बॉडी और इन डीड एनी बट ए क्वाइट सबॉर्डिनेट एंड प्योरली इंस्ट्रूमेंटल इम्पॉर्टेंस. ये आश्रम में योग में ये ऑटोमेटिकली लोगों के सिस्टम में आ जाता है. क्यों? अब ऐसे से कई घर हैं जो आश्रमाइट रहते हैं, जिसमें अगर आप देखें तो इवन कॉमन वाशरूम्स हैं. अब आप आज के समय में सोचिए कैसे रहते हैं, छोटा सा कमरा, उसमें बरसों लोगों ने गुजार दिए. कभी किसी को दे लिव हैप्पीली. अब मॉडर्न जनरेशन जो आई है एक अलग बैकग्राउंड से, उनके लिए ये भी कल्पना करना बहुत कठिन है, बट दे लिव. तो ये अपने आप, जैसे शेरविंद ने एक जगह कहा, वो सहानादि का पत्र है, गुरु मालूम है क्या मिराज, लॉबस्टर, मछली, ना जाने केकड़ा, क्या क्या खाने का मन कर रहा है, आपकी कोई प्रतिक्रिया? श्री अरविंद कहते हैं ईट योर डिजायर. तो इस तरह से धीरे धीरे हमको अपने उसको संयत करना होता है. ये सेल्फ डिसिप्लिन का एक एस्पेक्ट है योगा में. तो इस प्रकार से करते करते धीरे धीरे अपने आप एक समय आता है जब हमारी विल अपने आप को इम्पोज कर पाती है शरीर के ऊपर. मतलब इस हद तक जा सकता है. शेरविंद जी कहते हैं कि रोग से ठीक होने के लिए तुमको दो उपाय कर सकते हो. एक तो अपनी विल को इम्पोज करो शरीर के ऊपर, मेंटल विल को, और दूसरा फेथ रखो और डिवाइन मदर के प्रति रुको. और वो कहते हैं बेस्ट इज एंड रिजेक्ट द इलनेस. विल को इम्पोज करो, रिजेक्ट द इलनेस एंड रिजेक्ट द इलनेस. दूसरा हैव फेथ एंड ओपन टू द डिवाइन मदर, एंड बेस्ट इज इन दोनों को कंबाइन करना. अब ये विल को इम्पोज करना किस हद तक जा सकता है, बाबा आमटे की कहानी है. उनको लेप्रसी का, क्योंकि लेप्रसी के लिए कोई मानव सब्जेक्ट्स नहीं मिलते हैं दवाई टेस्ट करने के लिए, तो उन्होंने खुद को ही पूरा साइन करके पेपर कहा मुझे सब्जेक्ट बना लो. 3 बार उन्होंने लेप्रसी ऑर्गेनिज्म का इंजेक्शन लिया अपने खून के अंदर, कुछ नहीं हुआ. अब वो आदमी जो मेडल जीतता है तो मेडल को अपने छाती के अंदर लगा करके आता है, लिटरली पिन से चुभो करके। तो इस तरह का भी हम, ये नहीं कि हमको ये करना है, लेकिन ये इस हद तक मेंटल विल की कैपेसिटी है कि वो रोग को बिल्कुल हटा सकती है, उसके अंदर ये कैपेसिटी है जिसको हमको यूटिलाइज करना है। यहां तक दिस विल कम टू बी सो मच द नॉर्मल एटीट्यूड ऑफ द होल बीइंग टू द फिजिकल फ्रेम दैट द लैटर विल फील टू अस एज इफ समथिंग एक्सटर्नल एंड डिटैचेबल लाइक द ड्रेस वी वेयर और एन इंस्ट्रूमेंट वी हैपन टू बी कैरिंग इन अवर हैंड। सो ये केवल गीता में जो कहा है ना कि ये वासंसी जीर्णानी, ये केवल एक उक्ति नहीं है, एक समझने के लिए नहीं है, ये रियल एक्सपीरियंस है। ये शरीर के प्रति ऐसा प्रतीत होने लगता है, हम जान जाते हैं कि ये तो एक, इसको खोल करके रख दिया। वी मे इवन कम टू फील दैट द बॉडी इज इन ए सर्टेन सेंस नॉन एग्जिस्टेंट एक्सेप्ट एज ए सॉर्ट ऑफ पार्शियल एक्सप्रेशन ऑफ आवर वाइटल फोर्स एंड ऑफ आवर मेंटेलिटी। तो ये एक्सपीरियंसेस इसका साइन है कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। श्री अरविंद और माता जी के जीवन की एक घटना तो श्री अरविंद की है, जहाँ पे निरोधा अचानक देखते हैं कि वो उठ के किताब लाने जा रहे हैं और शरीर उनका ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी हो गया, वो शरीर के थ्रू बुकशेल्फ को देख पा रहे हैं। और माता जी के साथ तो कितने लोगों को कभी उनका शरीर लंबा दिखाई देता था, कभी छोटा, और लोगों ने श्री अरविंद से पूछा कि ये कैसे होता है। कहते हैं हाँ, क्योंकि वो शरीर, शी नॉट द बॉडी, वो एक इंस्ट्रूमेंट है। By the onrush of forces, she could do whatever she wants to do with the body. इस तरह की सिद्धियाँ औरों में भी हम लोगों ने पढ़ी हैं कि एक संत दो जगह, तीन जगह, बाई लोकेशन, ट्राई लोकेशन, सेम बॉडी। श्री अरविंद माता जी के केस में भी लोगों ने इसको अनुभव किया है। तो ये सारी संभावनाएं जिसको मेटीरियल साइंस अभी स्वीकार नहीं करती है, श्री अरविंद इसको बताते हैं, क्योंकि मेटीरियल साइंस ने हमारी लिमिटेशन को हमारा नॉर्मल बना दिया है। Secondly, with regard to the movements and experiences of the body, the mind will come to know the Purusha seated within it as first the witness or observer. This is the initial liberation of the mental being from servitude to the body. Finally, the mind will come to know the Purusha in the mind as the master of nature, whose sanction is necessary to her movements. ये एक actual experience है, हम सब लोग इसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं जैसे जैसे हम प्रयास करें। तो मान लीजिए कभी आपको पता चले कि ये बीमारी आ रही है, अब देखिए क्या होता है, आप बीमारी के जोन में जा रहे हैं या कोई बीमार आपसे मिलने आया, दो प्रतिक्रियाएं होती हैं, ओ माय गॉड ये तो मैं, मुझे ना हो जाए। तो कई बार ये होता है ना, अब मेरे सामने कई बार लोग मास्क पहन के आते हैं तो मैं कहता तुम्हारे मास्क से ज़्यादा डर लगता है क्योंकि तुम एक वो एमिट कर रहे हो कि भय बीमारी। एनीवेज, तो कई लोग होते हैं जो जैसे ही देखते हैं कोई छींक रहा है तो उनको लगता है अब बस अगला नंबर मेरा ही है, और दूसरी प्रतिक्रिया होती है कि वो कहीं भी चले जाते हैं, पर इससे अछूते रहते हैं, उनके अंदर ये भाव ही नहीं आता। और तीसरी एक और भी होती है जो अनुभव की जा सकती है कि आपको लगे कि ये रोग, उसके लिए थोड़ा सचेत होना लग पड़ता है कि ये रोग जैसे प्रवेश कर रहा हो, आपको हल्का कहीं पर कुछ एक अनईजी फीलिंग होगी, डिजीज के पहले एक अनईज होती है, तो आप उसी समय शांत हो जाइए और उसको एक्टिवली रिजेक्ट कीजिए, नो एंड स्टे क्वाइट, कॉल इन द मदर्स पीस फोर्स एंड क्लियर इट साथ के साथ। कई बार ये संभव नहीं होता है क्योंकि कई कारणों से आप व्यस्त हो या किसी उसमें, बट ये सब चीजें संभव है शरीर के साथ। तो यहां तक कहते हैं, बाई ए सिमिलर प्रोसेस द हैबिट बाई विच द बॉडीली नेचर एसोसिएट सर्टेन फॉर्म्स एंड डिग्रीज ऑफ एक्टिविटी विथ स्ट्रेन, फटीग, इनकैपेसिटी कैन बी रेक्टिफाइड एंड द पावर, फ्रीडम, स्विफ्टनेस, इफेक्टिवनेस ऑफ द वर्क वेदर फिजिकल और मेंटल विच कैन बी डन विथ दिस बॉडीली इंस्ट्रूमेंट मार्वेलसली इंक्रीज्ड, डबल्ड, ट्रिपल्ड, डेक्यूपल्ड। अब शेरविंद को स्वयं देखिए, वो कहते हैं कि और कुछ नहीं तो यही, अगर तुम देख लो कि मैं पत्र इतने लिखता रहता हूं तुम समझ जाओगे कि कितना, लोगों को विश्वास ही नहीं होता था कि कैसे कर पा रहे हैं, लेकिन ये सब संभव है। यहां वो बता रहे हैं कि इट्स कैपेसिटी कैन बी ऑगमेंटेड, एक तो वैसे भी आपकी ऊर्जा जो शरीर में फंसी थी उससे बाहर निकल आती है, और फिर अगर वो ऊर्जा कनेक्ट हो जाए डिवाइन के साथ तो कोई लिमिट नहीं है। तो इस ट्रेन होना, अब लोग अक्सर ये कहते हैं कि नहीं, शेरविंद को पढ़ने से नींद आती है, तो क्या करते हैं वो, गिव अप कर देते हैं। करना इसका बिल्कुल उल्टा चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि हमको शेरविंद को पढ़ नहीं पाते। ऑल इंडिया मैगजीन के बारे में आपको आश्चर्य होगा, लोग कि भाई आप बहुत ज़्यादा शेरविंद का नहीं दीजिए क्योंकि शेरविंद को लोग समझ नहीं पाते। तो मैंने कहा ऑल द मोर रीज़न कि ज़्यादा देना चाहिए। भाई आप ले रहे हो एक मैगजीन, शेरविंद से जुड़े हो, तो आपको तो प्रयास करना चाहिए। और एक्चुअली अगर हम प्रयास करें, थोड़े समय बाद हमारी मेंटल कैपेसिटी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है? वो चीज़ जो समझ नहीं आती आ रही थी, और कितने लोगों का ये अनुभव है, कहते हैं कि हमको पहले सावित्री नहीं समझ आ रही थी, फिर हम पढ़ते रहे। अब वो एट्रीब्यूट कई बार कहते हैं आपकी टॉक पर, इट्स नॉट अबाउट टॉक, आप पढ़ते रहे, लगे रहे, तो एक दिन आपकी जो माइंड की जो कैपेसिटी है समझने की, वो भी एक कैपेसिटी है, वो कहीं ना कहीं कोई द्वार खुल जाता है। तो मुख्य चीज है कि हमने सीमाएं अपनी खुद निर्धारित की हुई हैं। स्ट्रेन हो जाएगा, अरे पूरे दिन काम, बट एक्चुअली माइंड एंड वाइटल एनर्जी, देयर इज नो लिमिट टू विच इट कैन बी इंक्रीज्ड। शेरविंद बताते हैं 8 घंटे चलते थे वो, और ये बताते हैं कि जब उन्होंने 21 दिन तक भोजन नहीं ग्रहण, भोजन पानी कुछ नहीं ग्रहण किया था, कहते हैं, और मैं सारी एक्टिविटीज नॉर्मल करता रहा था, दिखे केवल एक एक्सपेरिमेंट के रूप में, 8 विच इंक्लूडेड 8 आवर्स ऑफ वॉकिंग। ये नहीं कि वो अनशन पे बैठे थे कि नहीं भाई बैक डोर से जूस दिए जा रहे हैं आपको, ऐसा कुछ नहीं। 8 घंटे चलना, लिखना, पढ़ना सब करते रहे। लेकिन फिर उन्होंने उसको इसलिए तोड़ा क्योंकि उन्होंने देखा कि फ्लैश लूज होता है, एक एक्सपेरिमेंट के रूप में उन्होंने किया था, और क्योंकि देह का जो मेटेरियल सब्सटेंस है वो लूज होने लगता है, पर अदरवाइज एनर्जी का जहाँ तक सवाल है ये बिल्कुल संभव है। माता जी से किसी ने पूछा, चंपकलाल जी ने पूछा, माता जी का दिन, तो दिन क्या कहें, ओके दिन रात को 2 बजे समाप्त होता था, कई बार 12 बजना तो आम बात थी, कई बार माँ 1:30 बजे 2 बजे अपने शयन कक्षा या जो भी कहें, कितनी देर के लिए, 2 घंटे के लिए, उसके बाद लोग आएंगे मिलने, डिपार्टमेंट वाले लोग। तो चंपकलाल जी एक बार पूछते हैं, माँ आप केवल एक ब्रेड या कुछ ऐसे खा के इतना कम खाएंगी तो कैसे होगा? तो माँ कहती, तुमको लगता है मैं इस पर जीवित हूँ? एक बार माँ ने भी बहुत दिनों तक, 10 दिनों तक ऐसे ही चलता रहा उनका, फिर उन्होंने क्यों खाना शुरू किया, वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। श्री अरविंद उनको देख के कहते हैं कि कि थोड़ा दुबली नहीं हो गई हो या पतली नहीं हो गई हो? तो माने बिकॉज लॉर्ड का आदेश है। तो ये सब हमारा केवल एक अरेंजमेंट है, इवोल्यूशन के माध्यम से प्रकृति ने अरेंज किया है। दूसरे अरेंजमेंट भी होते हैं, ऐसे जीव हैं जिनको एक पर्टिकुलर जर्म कोई प्रभाव नहीं करता है, इम्यूनिटी होती है नेचुरल। मंगूज है, कोबरा काट भी ले तो बच जाएगा बॉडी के अंदर उसके ऐसे न्यूरोटॉक्सिन्स। तो ये एक अरेंजमेंट है नेचर का और कुछ नहीं है, और इसको चेंज किया जा सकता है। बार बार शेरविंद ये बात इम्प्रेस कर रहे हैं। इसका नॉलेज से क्या संबंध है, तो यहां पर वो बार बार बता रहे हैं, 2 प्रकार से। एक तो शरीर से हम जितना बंधे रहेंगे हमारी चेतना फ्री नहीं रहेगी टू फाइंड द सेल्फ, एक तो पहला ये है। और इंटीग्रल नॉलेज के लिए, सेल्फ परफेक्शन के लिए ये और भी आवश्यक है, क्योंकि आपको मैनिफेस्टेशन में काम आना है, तो शरीर और मन दोनों की कैपेसिटी आपकी दुगनी तिगनी होगी, नहीं तो भगवान की शक्ति ऊर्जा कहां वेग को सह पाएंगे। तो इसलिए इसका संबंध है। ओके, इस बात को वो स्पष्ट रूप से फिर से एक बार बता रहे हैं कि दिस बीइंग सेड वी मस्ट ऐड दैट इन द मूवमेंट ऑफ द पाथ ऑफ नॉलेज परफेक्शन ऑफ द माइंड एंड बॉडी आर नो कंसिडरेशन एट ऑल और ओनली सेकेंडरी कंसिडरेशन। इसको आप देखेंगे कि कई ये साधु संन्यासी बहुत मतलब उन्होंने सेल्फ रियलाइज किया, ऐसा नहीं है, कई लोग हैं जिन्होंने किया है शरीर को नाना प्रकार के कष्ट दे करके, लेकिन जब वो वाणी बोलते, मतलब तब तक ठीक है जब तक कुछ बोलते नहीं है, अब बोलना शुरू करते हैं तो अटपटी सी बातें, एक भी चीज़ जो है कुछ अच्छे भी हैं पर कई चीज़ें वो अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। तभी तो श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि विवेकानंद इज माई इंस्ट्रूमेंट। तो ये अभिव्यक्ति के लिए आपको ये अपलिफ्ट करने, ये इंस्ट्रूमेंट को भी सेल्फ रियलाइजेशन जो ट्रेडिशनल योग में है उसमें ये फर्क नहीं पड़ता है। देवरा बाबा को देखिए, जेन्युइनली रियलाइज, उसको डाउट नहीं कर सकता। सिद्ध योगी थे, बायलोकेशन भी था, ट्राइलोकेशन भी था, पांव से मार के लोगों को आशीर्वाद देते थे, जेन्युइन भी, कई सारी सिद्धियां थी। लेकिन आप उनका जब इंटरव्यू सुनेंगे तो थोड़ा सा अगर आप टिपिकल वेस्टर्न माइंड से देखेंगे तो बचकाना लग सकता है, बट ही वॉज अ रियलाइज्ड पर्सन। पर वहां अभिव्यक्ति की बात नहीं है। एक पेड़ पर रहते थे ज्यादातर, मचान बना के उस पर पेड़ पर रहते थे वो। तो ये एक नॉलेज और इंटीग्रल नॉलेज और सेल्फ परफेक्शन में ये अंतर है कि हमको इंस्ट्रूमेंट की कैपेसिटी को भी विस्तार से बढ़ाना है। तो दो पथ हैं, शेरविंद बताते हैं, द वन थिंग नेसेसरी इज टू राइज आउट ऑफ नेचर टू द सेल्फ बाय ईदर द मोस्ट स्विफ्ट, जिसमें एसेटिक पाथ है, और द मोस्ट थरो एंड इफेक्टिव मेथड पॉसिबल। एंड द मेथड वी आर डिस्क्राइबिंग, दो नॉट द स्विफ्टेस्ट, इज द मोस्ट थरो गोइंग इन इट्स इफेक्टिविटी, क्योंकि ये पूर्णता का योग है, दिव्य परिपूर्णता का। अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कहते हैं कि मनुष्य के अंदर एक शरीर हमारा प्राणिक ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। इसलिए आप देखिए, किसी को ये कहा जाए डोंट डू एनीथिंग, ये बड़ा एक विरोधाभास है, डू डोंट डू एनीथिंग या डू नथिंग। कई बार लोग कहते हैं कि भाई क्या कर रहे हो, नहीं कुछ नहीं। पूछता भैया इसकी कला बताओ कैसे की जाती है। माता जी ने एक आध बार खेल खेल में कहा भी किसी को, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। कहते हैं माँ ये कैसे करूं मैं। अब इसको योग की भाषा में कहा जाता है प्रवृत्ति से निवृत्ति। एक और कर्म में आप जितना भी संलग्न हो लेकिन आपको थकान नहीं हो रही है, एक संभावना ये है। और दूसरी संभावना है जहां आपको कोई कुछ करने को नहीं है तो आप रेस्टलेस नहीं हो रहे हो कि नहीं मुझे कुछ करना है, कुछ करना है। तो ये दूसरी चीज भी इसी बॉडी के, क्योंकि बॉडी आपको इंपेल करता है, उसमें जो प्राणिक ऊर्जा है वो रेस्टलेस बनाती है। देखिए थोड़ी देर व्यक्ति बैठा रहता है ध्यान में या किसी में, कुछ देर बाद क्या मन करता है, मन नहीं करता है, शरीर के अंदर होती है थोड़ा हाथ पांव छटपट। शुरू में तो बैठे ही नहीं जाता है, पांव छटपट करते रहेंगे और फिर बीच में मन का, फिर अंत में व्यक्ति एक पशु की तरह उठ जाता है। पशु होता है ना, प्रवृत्ति होती है उसमें उठने की, तो प्राण की ऊर्जा है जो उसको रेस्टलेस बना रही है। तो इनएक्शन की भी कैपेसिटी होनी चाहिए। तो कई बार ये किसी सत्संग में बैठो या कुछ, इसमें ये भी एक कैपेसिटी डेवलप हो जाती है, इनएक्शन की कैपेसिटी, क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे हैं उस समय। The power to do nothing, which is quite different from indolence, incapacity or aversion to action and attachment to inaction, is a great power and a great mastery. और कई लोगों को ये चीज अनुभव हुई है। यहाँ पर एक अपने रंगादाई बता रहे थे, तो बता रहे थे कि कैसे प्रेस में काम करते थे, फिर कुछ घटनाक्रम हुआ और वहाँ से उनको काम नहीं करने का एक सुयोग या जो भी कहें, लेकिन उस समय वो सुयोग के रूप में तो नहीं आया था। तो मैंने उनसे पूछा, फिर आपने कहा, उन्होंने कहा मुझे बहुत अच्छी एक अवसर मिल गया कि मुझे कुछ नहीं करना है। तो उन्होंने खूब अपना फिर से अपना कॉन्टैक्ट महर्षि अरविंदो की लेखनी से रखा। एक साल बाद अचानक उनसे कहा गया कि आप नॉलेज में दी लाइफ डिवाइन पढ़ाइए। अब देखिए ये उस समय कई बार लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमें कुछ काम नहीं है, कुछ काम नहीं है। ये भी नहीं होना चाहिए, काम है तो ये भी नहीं कि अरे हमको बहुत काम है। दोनों अवस्थाओं में आपको वो भाव रखना है कि अगर बहुत काम है तो वो भी सर आँखों पर, काम नहीं है वो भी सर आँखों पर। उसमें ये भी नहीं कि भाई मेरे पास काम नहीं है। लेकिन ये दोनों अवस्थाओं का होना कठिन है, इसलिए श्री अरविंद हम लोगों को एक सुंदर सी बात बता रहे हैं, एक प्रैक्टिकल बात। प्रैक्टिकल बात क्या कहते हैं, When we attain to this perfection, then action and inaction become immaterial. Since neither interferes with the freedom of the soul or draws it away from its urge towards the self or its poise in the self. अब ये उन लोगों के ऊपर भी है जो कहते हैं कि नहीं, एक्शन का औचित्य समाप्त हो जाता है जब आप सेल्फ को रियलाइज कर लेते हैं, आप फ्री हो जाते हो। तो फ्रीडम तो सच्ची वो है जो किसी भी आउटर कंडीशन से बंधी ना हो। आप अगर कर्म ना करने से बंधे हैं वो भी एक बंधन है, और कर्म से बंधे हैं वो भी एक बंधन है, तो दोनों से मुक्ति, वो दोनों अवस्थाओं में व्यक्ति संभाव में रहता है। बट दिस स्टेट ऑफ परफेक्शन अराइव्स लेटर इन द योगा। लेकिन ये बहुत बात की पीएचडी की चीज है, तो तब तक क्या करना चाहिए, एंड टिल देन द लॉ ऑफ मॉडरेशन लेड डाउन बाय द गीता इज द बेस्ट फॉर अस। आप देखेंगे माँ कई बार कहती हैं, शेरिन स्वयं कहते हैं कि जो मैं एक्स के लिए कहता हूँ वो एक्स के लिए है, वाई के लिए नहीं है। कोई व्यक्ति जो बहुत खाता है, बहुत सोता है, उसको मैं ये कह सकता हूँ कि ईट लेस एंड स्लीप लेस। कोई जो कम खाता और कम सोता है, तो आई मे राइट ईट मोर एंड स्लीप मोर। तो ये मॉडरेशन, जब तक हम उस अवस्था में नहीं पहुंचते, तो बैलेंस बिटवीन वर्क एंड रेस्ट, आजकल ये बात कही जाती है ना, वर्क रेस्ट का बैलेंस। क्योंकि अगर आप करते चले जाएंगे और आप वो परफेक्शन आपके अंदर नहीं है, तो आपकी ऊर्जाएं क्षीण हो जाएंगी, शरीर कम हो सकता है, यू मे बी ससेप्टेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ अटैक्स। सो रेस्ट और वर्क का बैलेंस, और वहां पर लॉ ऑफ मॉडरेशन इज द बेस्ट फॉर अस, इसको समझा रहे हैं। टू मच मेंटल और फिजिकल एक्शन देन इज नॉट गुड। अब देखिए, केवल इसको अगर कोई कोट करे, बैकग्राउंड नहीं है, तो लगे श्री अरविंद कहते हैं ज्यादा नहीं काम करना चाहिए, तो साधक की तरह मुझे रहना चाहिए, मिनिमम वर्क 6 घंटे काम हो गया। वो था ना गधा, क्या नाम था उसका, बोडे, तो काम नहीं करता था, ऐसे उछलता कूदता रहता था। तो किसी ने श्री अरविंद को लिखा, ये कैसा गधा है, मतलब गधे तो बोझ लेके चलने के आदि होते हैं, इसको जैसे ही हम काम के लिए कुछ कहते हैं ये एकदम खड़ा रहता है, इनर्शिया में चला जाता है, लेकिन ऐसे उछलता कूदता रहता है। तो श्री अरविंद ने अपनी श्वास के नीचे कहा, टिपिकल साधक, कि भैया हमारा टाइम हो गया, प्लेग्राउंड का टाइम हो गया, अब हम जा रहे हैं, 4 बज गए, हमको काम से मतलब नहीं है। तो ये एक व्यंगात्मक व्यंग भी है, एक ह्यूमर भी है, वन शुड नॉट टेक इट सीरियसली, बट बड़ी सुंदर बात है, ये एक अलग तरह का बंधन है। तो यहां पर श्री अरविंद कहते हैं मॉडरेशन, मॉडरेशन क्या है, टू मच मेंटल और फिजिकल एक्शन देन इज नॉट गुड, सिंस एक्सेस ड्रॉज अवे टू मच एनर्जी एंड रिएक्ट्स अनफेवरेबली अपॉन द स्पिरिचुअल कंडीशन। अगर आप बहुत ज्यादा, जब तक आप उस अवस्था को नहीं पहुंचे हो, तो आप एक एनर्जी आपकी इतनी ड्रेन्ड हो जाएगी, फिर टुवर्ड द एंड ऑफ द डे या बीच में आप नहीं कर पाओगे, उस पॉइस को नहीं मेंटेन कर पाओगे। टू लिटिल ऑल्सो इज नॉट गुड, टू लिटिल में क्या समस्या है, टू लिटिल ऑल्सो इज नॉट गुड, सिंस डिफेक्ट लीड्स टू ए हैबिट ऑफ इनएक्शन एंड इवन टू एन इनकेपेसिटी विच हैज आउट आफ्टरवर्ड्स टू बी सरमाउंटेड विद डिफिकल्टी। कि काम करने की आदत ही नहीं है, तो फिर वो आजकल की बहू वाला हिसाब, काम ही नहीं करूंगी। अब आप काम नहीं कर रहे हो, तो फिर नेचुरली थोड़ा सा भी काम आपको बहुत ज्यादा लगता है, आदत नहीं है। होता है ना, आज के बच्चे लग्जरी में बड़े हुए हैं, उनको काम करने की आदत नहीं है, तो थोड़ा भी काम होने से उनको बहुत बड़ा स्ट्रेन लगता है। और कुछ नहीं, थाली ला करके रख लो या अपना ग्लास उठा करके रख दो, उसके लिए भी वो वेट करते हैं कोई उठा के ले जाए। तो ये क्योंकि अब इनकैपेसिटी हो गई। अब यहां पर इसलिए हुई क्योंकि बहुत ज्यादा मेंटलाइज दुनिया में लोग रहते हैं, वर्चुअल रियलिटी है सबकी, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया वर्चुअल रियलिटी, तो दे आर नॉट एबल टू डू दिस कैपेसिटी. तो दोनों ही बहुत अधिक काम में सारे दिन करते रहना, उससे भी आपकी ऊर्जा ड्रेन होती है. और अनलेस आप खुले हुए हो अखंड ऊर्जा के प्रति, तो कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं, इंक्लूडिंग फॉलिंग सिक. और वहीं दूसरी ओर अगर हम नहीं काम करेंगे, बस एक लिमिटेड कि भाई हमने दो घंटे अपनी दिहाड़ी की मजदूरी कर दी, तो फिर आपको कैपेसिटी क्षीण हो जाएगी. तो भगवान को मैनिफेस्ट करना तो दूर की बात है, तमस आ जाएगा और तमस में रोग बड़े आसानी से प्रवेश करते हैं, तामसिक अवस्था आ जाएगी. तो श्री अरविंद हमें एक प्रैक्टिकल एडवाइस यहाँ दे रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो करना क्या चाहिए? स्टिल पीरियड्स ऑफ एब्सोल्यूट काम, सॉलिट्यूड एंड सेसेशन फ्रॉम वर्क्स आर हाईली डिजायरेबल एंड शुड बी सिक्योर्ड एज ऑफन एज पॉसिबल फॉर दैट रिसेशन ऑफ द सोल इन टू इट्सेल्फ विच इज इंडिस्पेंसिबल टू नॉलेज. सो जो ज्ञान के अभिप्सु हैं उनको का, ये तो त्रिविध मार्ग है तो कर्म सब चीज चलती रहेगी, लेकिन बीच बीच में समय निकाल करके. ये नहीं कह रहे हैं शेरविंद एक साथ सुबह उठ के आपने ढाई घंटे मेडिटेशन कर लिया, नहीं. बीच बीच में आप समय निकालिए, शांत बैठ जाइए, 20 मिनट, 25 मिनट, 15 मिनट, जस्ट क्वाइटन योर सेल्फ एंड रिकूप अपनी है अंदर, कनेक्ट कीजिए. अब एक एक की कैपेसिटी है कितना समय लगता है, कहाँ पर भी हैं तो वहाँ बीच बीच में हमको ये क्षण निकालने चाहिए. अंत में, वाइल डीलिंग दस विद द बॉडी वी हैव नेसेसरली टू डील ऑल्सो विद द प्राण और लाइफ एनर्जी. फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेज वी हैव टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द लाइफ एनर्जी एज इट एक्ट्स इन द बॉडी, द फिजिकल प्राणा, एंड द लाइफ एनर्जी एज इट्स एक्ट्स इन सपोर्ट ऑफ द मेंटल एक्टिविटीज, द साइकिकल प्राण. तो ट्रेडिशनल योग में पंच प्राण कहे गए, यानी देर आर फाइव फोल्ड मूवमेंट ऑफ द प्राण. वो पांच नागों, पांच सिर वाला नाग, ये डिस्क्रिप्शन आता है मिस्टिक लिटरेचर में, पांच फन वाला नाग. तो ये प्राण ऊर्जा है, वही फीड करती है आपके शरीर को. प्राण ऊर्जा है, वही फीड करती है आपके निम्न प्राण को, जिसमें ये डिजायर्स वही सब उसको भी फीडर करती है. प्राण ऊर्जा है जो आपकी भावना और इनको भी फीड करती है. और प्राण ऊर्जा आपके मन और स्पीच इसको भी फीड करती है. और पांचवी जो है समान, तो इसके नाम है, सब परिचित हैं उससे, अपान, उड़ान, व्यान, समान. तो ये सारे जो हैं कि देयर इज ए फाइव फोल्ड मूवमेंट, एक बैलेंसिंग भी होती है. तो उसी चीज को शेरविन की, ये सबको वही प्राण फीड करता है. तो ये चीज जाना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हम केवल पूरे प्राण को अपने शरीर में ही लगाए हुए हैं तो वेरी लिटिल इज अवेलेबल. अब ऐसे लोग हैं जो सारे दिन देह के बारे में उनका ख्याल रहता है, सुबह से शाम तक शरीर उलझा, देह आत्मबोध में मन उलझा हुआ है, तो प्राण भी ऊर्जा उलझी हुई है. तो एनर्जी है ही नहीं, ना कुछ पढ़ने के लिए, ना ध्यान करने के लिए. तो ये शरीर हमें बता रहे हैं कि वो सेम लाइफ एनर्जी है जो हमारे माइंड को भी एक्टिवेट करती है और जो हमारे शरीर को भी पोषण करती है. फॉर वी लीड ऑलवेज अ डबल लाइफ, मेंटल एंड फिजिकल, एंड द सेम लाइफ एनर्जी एक्ट्स डिफरेंटली एंड अज्यूम्स ए डिफरेंट एस्पेक्ट अकॉर्डिंग एज इट लेंड्स इटसेल्फ टू वन और द अदर. इसीलिए कई लोग जो शरीर से बहुत जुड़े होते हैं, जब शरीर उनका बीमार पड़ता है तो कोई मेंटल एक्टिविटी नहीं कर पाते. हमने देखा होगा, कहते हैं एकदम असंभव होता है उनके लिए कुछ पढ़ना उड़ना कुछ भी. और कुछ लोग कॉन्ट्रेरी में, कितने भी बीमार हो मेंटल एक्टिविटी उनकी कंटिन्यू रह सकती है, वो पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, सब कुछ, दे कैन सेपरेट देमसेल्व्स फ्रॉम द फिजिकल बॉडी. क्योंकि ऊर्जा तो वही है, लेकिन जब शरीर में उलझी रहती है तो कठिन हो जाता है. इन द बॉडी इट प्रोड्यूसेस दीज रिएक्शंस ऑफ हंगर, थर्स्ट, फटीग, हेल्थ, डिजीज, फिजिकल विगर एटसेट्रा, विच आर दी वाइटल एक्सपीरियंसेस ऑफ द फिजिकल फ्रेम. फॉर द ग्रॉस बॉडी ऑफ मैन इज नॉट लाइक द स्टोन और द अर्थ, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू शीट्स, द वाइटल एंड द फूड. प्रैक्टिकली इन ड्रॉइंग बैक फ्रॉम द बॉडी वी ड्रॉ बैक फ्रॉम द फिजिकल लाइफ एनर्जी ऑल्सो, इवन वाइल वी डिस्टिंग्विश द टू एंड फील द लैटर नियरर टू अस दैन द मियर फिजिकल इंस्ट्रूमेंट. द एंटायर कॉन्क्वेस्ट ऑफ द बॉडी कम्स इन फैक्ट बाई द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द फिजिकल लाइफ एनर्जी. इसमें खासकर फूड और सेक्स का बहुत बड़ा रोल है. और इसलिए शेरविंद ये बताते हैं कि ये वही ऊर्जा है, आप कंजर्व नहीं करोगे तो ये थ्रोन आउट होती है। एक जगह ऐसी सी एडवाइस है शेरविंद की, कहते सर मैं बहुत बार बार बीमार पड़ता हूँ तो मैं क्या करूँ। शेरविंद की एडवाइस आप सुने, कहते हैं उसको बोलो कि थोड़ा ब्रह्मचर्य का पालन करे, वो बिल्कुल वापस विगर में आ जाएगा। अब उसने लिखा भी नहीं है कि मेरी क्या समस्या, कहते थोड़ा पालन करे तो वापस उसका विगर आ जाएगा। अब ऐसे ऐसे लोग हैं, स्वामी दयानंद की बात है, राममूर्ति की बात है, किसी ने पूछा कि इतनी ऊर्जा आपको कैसे आती है, तो एक शब्द ब्रह्मचर्य। मेरे अपने मामा जी से मैंने सुनी हुई ये बात थी, सारा वो खाने पीने सब कुछ करते जैसे नॉर्मल 95 पे एकदम स्वस्थ रह करके। तो मैंने एक बार पूछा कि आपको ये ऊर्जा कहाँ से आती है, वो रॉड को बेंड कर दें ऐसे नहीं कि वो बड़े बलशाली थे। तो आई आस्क्ड हिम वंस कि आपको इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, इतनी शक्ति, बिकॉज आई वॉन्टेड टू नो ताकि मैं भी प्रैक्टिस करूँ। तो उन्होंने कहा ब्रह्मचर्य से बेटा, ब्रह्मचर्य से आती है, बिकॉज हिज वाइफ हैड डाइड आफ्टर 1 ईयर, फिर उन्होंने रीमैरिज नहीं करी। तो ये पूरा एक विज्ञान है अपने आप में जिसको हम नहीं जानते। अब ब्रह्मचर्य इज नॉट जस्ट अबाउट सेक्शुअल एब्सटेंशन फिजिकली, उसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। वो जो एनर्जी जो उलझी हुई है बुरी तरह सांसारिक चीज़ों में और फिजिकलिटी के माध्यम से, तो वहाँ पर फिजिकल फ्रेम की बात हो रही। खाने में ध्यान पूरा लगा हुआ है, भोजन में आसक्ति लेके वाह, चटकारे लेके, ये सारी जो चीज़ें हैं वो देहात्म बोध, हमको उससे अलग होना है। रस का त्याग नहीं करना है, लेकिन उससे जो हम उलझे हुए हैं, अटैच्ड हैं, उसका परित्याग करना है। अलॉन्ग विद द अटैचमेंट टू द बॉडी एंड इट्स वर्क्स, द अटैचमेंट टू लाइफ इन द बॉडी इज ओवरकम। फॉर व्हेन वी फील, अब इसका जो प्रमाण क्या होता है, मतलब कैसे पता चले कि किसी ने इसको ओवरकम कर लिया है, क्योंकि आप कई सारी चीज़ें एक एरिया में है एक एरिया में नहीं है, पता कैसे चलेगा कि एक्चुअली ये अपने शरीर के इन्वॉल्वमेंट से अलग हो गया है। तो शेरविंद कहते हैं फॉर व्हेन वी फील द फिजिकल बीइंग टू बी नॉट अवर सेल्व्स बट ओनली अ ड्रेस और एन इंस्ट्रूमेंट, द रिपल्शन टू द डेथ ऑफ द बॉडी विच इज सो स्ट्रांग एंड वेहमेंट एंड इंस्टिंक्ट ऑफ द वाइटल मैन मस्ट नेसेसरली वीकन एंड कैन बी थ्रोन अवे। यही तो मृत्यु का अंतिम प्रश्न होता है, चलोगे? अरे सर अभी मेरी बच्चे की शादी होनी है, हमको क्या कहना है, भैया तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, माँ जब आएंगी लेंगी ले जाएंगी, प्रॉब्लम क्या है, आप कौन, हमें पूछना चाहिए वो आर यू। अब वो क्या करती है, आपको भयभीत करके, वो आदमी परेशान, मृत्यु होने वाली है, भय से आदमी कहते ना आधा मर जाता है, तो फिर आप अपने आप ना किसी, और ये कई बार पैराडॉक्सिकल रिएक्शंस कर सकती है कि भाई किसी की मृत्यु हुई है, आप उसमें शोक नहीं महसूस कर रहे हो, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि मृत्यु होती नहीं। तो यू कैनॉट फील द वे एक पूरा जो देह से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो महसूस करता है, और फिर जब मृत्यु नहीं है तो शरीर को लेकर के इतनी जो हमारी छटपट होती है, भय होता है, ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। तो ये इसका लक्षण होता है, द रिपल्शन टू द डेथ ऑफ द बॉडी विच इज सो स्ट्रांग एंड वेहमेंट एंड इंस्टिंक्ट ऑफ द वाइटल मैन मस्ट नेसेसरली वीकन एंड कैन बी थ्रोन अवे। इसीलिए वहां कहती है वन शुड नॉट विल टू डाई, वन शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ डाइंग, दोनों चीजें, कि जब जैसी माँ की मर्जी होगी वो उस हिसाब से, ना कि भाई अब बहुत हो गया चले ही जाना अच्छा है। और ज़्यादातर जो ऐसा कहते रहते हैं वो बहुत लंबी उम्र होती है, ऐसी कहावत है, शायद सही भी है। और दूसरा है कि ना ये होना चाहिए कि अरे मुझे कुछ हो जाएगा, अफ्रेड ऑफ डेथ, दोनों चीज़ों से आप मुक्त हो जाते हो। द फियर ऑफ डेथ थ्रोन अवे इट मस्ट बी एन एंटायरली, किसके बारे में, फियर ऑफ डेथ, द फियर ऑफ डेथ एंड द एवर्शन टू बॉडिली सेसेशन आर द स्टिग्मा लेफ्ट बाई हिज एनिमल ओरिजिन ऑन द ह्यूमन बींग, दैट ब्रांड मस्ट बी अटरली फेस्ड। ये महावाक्य है, लास्ट सेंटेंस है, टेक होम साइन है, टेक होम पॉइंट है, कि कैसे पता चलता है कि आप वास्तव में आपने स्वयं को शरीर की पहचान से अलग कर लिया है। तो यहां पर देह आत्म बोध अब नहीं रहा, इसकी ये पहचान है कि आपको मृत्यु का ना भय होता है ना इच्छा होती है। थ्रोन अवे इट मस्ट बी एन एंटायरली, पूरी तरह इस मृत्यु के भय को हमको अपने अंदर से फेंक देना है. द फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का भय, एंड द एवर्शन टू बॉडिली सेसेशन, जुगुप्सा कि भाई मेरा शरीर नहीं रहेगा. अरे क्या बात है, आपने प्राइस पे कर दिया है ना, दूसरा मिलेगा, अच्छा मिलेगा. दाम तो चुका दिया है, अच्छी जीवन जिया है तो आपने दाम चुका दिया है उसका, प्रॉब्लम क्या है. लेकिन इसीलिए एवर्शन, एवर्शन टू फिजिकल डेथ. आर द स्टिग्मा, ये पशुत्व की जो छाप है वो इस पर है. आर द स्टिग्मा लेफ्ट बाय हिज एनिमल ओरिजिन ऑन द ह्यूमन बीइंग, क्योंकि पशु पूरी तरह देहात्मबोध में जीते हैं, उनका सारा सेल्फ जो है शरीर है. इसलिए आप देखिए जैसे ही उनके ऊपर कोई अटैक, उनकी इंस्टिंक्ट कैसे भागते हैं भयभीत होकर के. मनुष्य में ये इंस्टिंक्ट इतनी भयानक हो गई है कि आपको रियल डेंजर हो ना हो, अगर डॉक्टर ने कह दिया तो आप भागते हो. और डॉक्टर पहुंचने के पहले वो जो एम्बुलेंस ले जाती है, हूटर लगा करके चारों तरफ लोगों को बीच में कि भाई ये मरने वाला है, मरने वाला है. और जो अंदर में बैठा है ना वो कांप रहा होता है कि ये तो आप नहीं बचेंगे. हैव अ हार्ट, कुछ अच्छा म्यूजिक लगा लो, ये हूटर लगा के कुछ. इस हद तक ये मृत्यु का भय है कि किसी ने एक बार मैंने कहा था, कोई बहुत ऐसे उनका जैसे लास्ट मोमेंट है, उम्र हो गई, सब हो गया, मिलने गया मैं, तो मैंने मजाक नहीं, मतलब सीरियसली मैंने कहा चाचा जी आप भगवत गीता पढ़ें. तो उन्होंने कहा बेटा तू ये कह रहा कि मैं मरने वाला हूँ. तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं कहा, गीता कब पढ़ते हैं, बिकॉज मरने वाला है ने, मतलब इतना क्या डरना, आप 90 के हो गए, पढ़िए भगवत गीता, आप कुछ तो मतलब एटलीस्ट यू हियर सावित्री, बट इफ यू से दिस पीपल टेक इट द अदर वे, यू आर साइनिंग ए डेथ वारंट. तो पशु में क्या होता है, जब एक्चुअली मृत्यु सामने खड़ी है पीछे खड़ी है तब आप भाग रहे हो, बट ह्यूमन माइंड फैब्रिकेट्स, इट लिव्स अंडर द शेडो ऑफ डेथ एज इफ इट इज राइट देयर ऑल द टाइम. हवा जिसको कहते हैं, हवा बना के रखना. तो कितना अच्छा है ना, वी कम आउट ऑफ द फियर ऑफ डेथ, बिकॉज बॉडी इज ओनली ए रोब, दैट्स ऑल. वासंसी जीर्णानी यथा विहाय, लेफ्ट बाय हिज एनिमल ओरिजिन ऑन द ह्यूमन बीइंग, दैट ब्रांड मस्ट बी अटरली फेस्ड. वो ब्रांड है कि भैया है तो ये पशु ही, अभी थोड़ी बुद्धि आ गई है, थोड़ा अखबार पढ़ लेता है, न्यूज सुन लेता है, विवेचना कर लेता है, डिस्कशन कर लेता है गाजा और पैलेस्टीन और इसके वार पे, लेकिन है तो भैया पशु, इसकी बात का क्या, क्यों, क्योंकि वो मृत्यु से भयभीत है. तो आज से हम बस इतना ही प्रैक्टिस करें, मृत्यु का भय त्याग दें. वी शुड गेट रिड ऑफ द फियर ऑफ डेथ, इट्स द बिगेस्ट होक्स ऑन प्लैनेट अर्थ, बिकॉज देर इज नथिंग कॉल्ड डेथ, इट्स जस्ट ए पासिंग ट्रांजिशन, दैट्स ऑल. जय माँ.